ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਤ ਵਰਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਕੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਹਨ, ਉਲਟ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਕੌੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫੇਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਗੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰ ਲਏ ਸਮਝੋ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਣ ਪਏ ਉਦਾਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਵਸਤਰ ਹਰ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈਂ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਪਿਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਢ 'ਤੇ ਚੋਟ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਅਗਰ ਮੁੱਢ 'ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਕੌਣ ਤੁਮੇ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਹਾਰਾ, ਕੌਣ ਮਾਰ ਕਵਨ ਸਵਾਲ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਪਾਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਡੋਂਡੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, मैं किसे नूं आखनी नहीं आया कि ना मेरा लवो। साडे इतिहास विच बड़ा खूबसूरत लिखिया होया है, जब आप गुरु नानक पातशाह दा प्रकाश होया ता उस वेले दौलता दाई ने दो कौतक देखे, उनते सारी नगरी ने कितने कौतक देखे सन, पर लिखे दो कौतक दौलता दाई ने देखे। पहला कौतक ए सी कि आप प्रगट हुए हन ते अपनी एक उंगल आपने आसमान वल कीती हुई सी, ते दूसरे मुख विचों ए शब्द दाई ने सुने, हूं तेरा तेरो ना हूं, मैं तेरा हां, तेरा ना जपान आया हूं, और कोई मेरा मकसद नहीं है संसार ते आमन। इस करके आपने फरमाया साच कहूं, अपनी गल मैं नहीं करांगा, भावें कुछ हो जाए अपने मैं हों दा प्रगटावा नहीं करांगा। अते यही कारण है, कुछ है एक साधु ने बाद ही चिक फकीर ने पूछे तुहाडा नाम की है, गुरु नानक साहब कहंदे ने अजय मेरा नाम रह गया है, अजय कोई मेरा नाम है, हुण मैं जिंदगी दे आखिरी सालां विच हां, अजय भी तैनू ये कोई शक पै गया है कि मेरा कोई नाम है। अते यही गुरु नानक पिता दी सब तो पहला उपदेश है, कोशिश होवे कि सानू अपना नाम बार बार न सुनाना पवे। ये एक पिता ने सानू रस्ता दसिया, अते जो मुख सिद्धांत दिता साच कहो अरदास हमारी, मैं अपनिया साथियां नू सिर्फ एक गल दृढ़ करा रहा हां, अरदास करन दी जा। अते जेड़े लोकी कहंदे ने अरदास की लोड़ नहीं है, जेड़े कहंदे ने अरदास करनी नहीं चाहिए, जेड़े कहंदे ने अपने आप सुन लैंदा है, या जेड़े कहंदे ने ये कोई रस्ता की होया भाई सारे खड़े होके अरदास करते हैं, उन्होंने साडा मुढ़ला सिद्धांत नहीं पता। मुढ़ला सिद्धांत ये है अरदास हमारी, या जिन्हें पता कई पता नहीं है कि असी सिर्फ कड़ा प्रसाद प्रसाद क्यों कहने, क्यों लिखिया रहत मर्यादे च होर कोई प्रसाद प्रवान नहीं है, क्यों कोई आदमी जान बुझ के मनमुखता नाल शनिचरवार नूं छोले वरतान लग पवे, मंगलवार नूं पूड़ियां वरतान लग पवे, शुक्रवार नूं बर्फी वरतान लग पवे। आम तौर पर ऐसे लोग करते हैं। ये महाराज ने एक हुक्म दे दिता कि कड़ा प्रसाद ही प्रवान है। इसका यही कारण है कि जिस वेले अरदास हुंदी है, अरदास साडा मुख सिद्धांत दे नाते सानू समझा दिता गया है, जिवें कड़ा प्रसाद कोई चीज छड्डन वाली नहीं है, सारी दी सारी असी गुरु ग्रंथ साहब दे हजूर अपने मुंह च पा लैने हां। इसे तरह जो उपदेश इत्थे होया है मैं ग्रहण करके जा रहा हां, छड के नहीं जा रहा। यह है कड़ा प्रसाद, यह प्राचीन पंथ प्रकाश च लिखिया है, यह कलगीधर पातशाह नहीं गया, इन्हों कुछ समझ लिया जे जिन्हें कोई बच्चा नौजवान माई भाई आके कि गुरुद्वारे अंदर ब्रेकफास्ट दिता जा रहा है। कई कहने लग जाते हैं ना कि सिख सर्व वेरी नाइस ब्रेकफास्ट, कि सिख जेड़े ने बड़ा अच्छा नाश्ता देने, कोई नाश्ता नहीं है, यह तो गुरु ग्रंथ साहब के हजूर असी दो हाथ जोड़ के दो हथा लैके जो सानू वस्तु मिली है सारी की सारी छक लैने। सिर्फ एकड़ा प्रसाद ऐसा है जिस विचों कोई चीज तुसी देख लो छड़ी नहीं जाती, सारी की सारी ग्रहण करने जी कि रह भी जाए वह भी असी अपने हथा नाल मल लैने। इस एकड़ा प्रसाद का गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने समझाया, इस करके संगत चकड़ा प्रसाद वरताया जाए कि सब कुछ मैं ग्रहण कर रहा हां, छट के नहीं इतने जा रहा। जो कीर्तन होया है, जो शब्द होया है, जो वाक आया है, जो विचार हुई है, इसमें मैं ग्रहण कर रहा। इसे करके अरदास साडा जरूरी अंग बन गया, ताकि कोई सिख अरदास विच सावधान होके ऐसा महसूस ना करे कि कोई इतने क्रिया हो रही है, कोई कर्म हो रहा है, कोई इस थान से एक्टिविटी हो रही है। अरदास साडा मुढ़ला सिद्धांत है। इस करके महाराज ने अरदास की महिमा आप दसी, आप समझाई। एक गल होर, यह जी असी अरदास भाई साहब रोज गुरु ग्रंथ साहब जी हजूर सावधान हो की करते हैं, असी भी सावधान होने, ये अरदास अज तो तकरीबन 240 साल पहला बनी। फिर कमाल है कौम, यह कौम मर्यादा प्रस्त है, यह कौम कर्मकांडी नहीं है, सिख कौम मर्यादा प्रस्त है। जेड़ी मर्यादा एक बारी बन गई उसने इसने उलंघया नहीं है। 1748 जे ठीक तारीख दें तो सारे पंथ ने बैठ के यह जी अरदास हूं भाई साहब ने करनी है, अज जरा ध्यान नाल सुनिया दे, भावें हमेशा ध्यान नाल सुनने, ये 1748 सारे पंथ ने बैठ के कलू कहारे तो बाद, छोटे कलू कहारे तो बाद अकाल तख्त के उत्ते सरबत खालसा दे विच ये अरदास सुनाई गई, पढ़ी गई, कीती गई। फिर उस तो बाद इस अरदास अंदर किसी ने एक अक्षर भी तब्दील नहीं किया। कैसी अच्छी कौम है कि इतना साल इसमें संभाल के रखी बैठी है, भावें कोई कितना कवे, तुम आप पता है कि तुम भी चिट्ठिया पाते हैं, प्रबंधकों भी पाते हैं, सानू भी पाते हैं, अरदास यह शब्द पा दो जिमें एक बारी किसी चिट्ठी पाई अते बड़े जोर नाल चिट्ठी पाई, बड़े अपने इस तरह लाल कि जिमें अरदास शब्द ना पाए तो असी सारे नाराज होवांगे। जिसले साडे कोल चिट्ठी आई शब्द ये सन जिन्ना टैंकां नाल मुकाबला करते हुए अपनियां कुर्बानियां दित्तियां उन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरू, अते कहन लगे ये अरदास शब्द पाओ क्योंकि 84 च होया सामने टैंकां नाल मुकाबला होया। असां उन्हां नूं सिर्फ इतनी बेनती की अते आखिया मन गए अरदास जो बनी है पहली एहतियात यह की है अरदास के अंदर, ना समा है ना स्थान है, अरदास के अंदर ना स्पेस है ना अरदास के अंदर टाइम है, अरदास के अंदर यह सर्वव्यापी है, त्रै कौन है, किसी वेले कोई किसी समय के नाल नियत नहीं हो सकती। आप क्योंकि सानू अरदास बनाने वाले गुरु कोलों सोझी लैन वाले दस गए ने, जिन्ना नाम जपया, जिन्ना वंड छकया, जिन्ना देख चलाई, जिन्ना ते हवाई पाव, जे उस वेले ऐसा होया गुरुद्वारियां दी पवित्रता लई धर्म हेत, अज भी जे कोई धर्म हेत कर रहा है तो अरदास दा वो हिस्सा है, अरदास तो बाहर नहीं है। अज कोई आखे टैंकां नाल, कल कोई रॉकेट्स नाल करेगा हमला, कल कोई किसी होर नवे तरीके ना ले आएगा, तो फिर तो अरदास दिनों दिन अपने आप कोई ना कोई सज्जन वधान कठान लग पवेगा। जो अरदास दे ठीक अर्थ ने ये फिर खत्म हो जाएंगे क्योंकि अरदास दे ठीक अर्थ ने पटीशन। असी रोज महाराज के अगे खड़े होके सारे पंथ वालों हथ जोड़ के एक पटीशन करते हैं, अखीर जो मंगते हाँ जिस तरह कोई अच्छा वकील, अच्छा पलीडर, अच्छा एडवोकेट एक पटीशन बनाता है जिसनों अर्जदाश्त कहते हैं, असी रोज वाहेगुरु अगे गुरु ग्रंथ साहब के हजूर खड़े होकर एक अर्जदाश्त करने हाँ कि यह पंथ न दें, यह संसार न दें, ताकि सारी दुनिया के अंदर वाहेगुरु धर्म का जयकार हो सके। यह है साड़ी अरदास का मूड। इस करके अगर कोई आखे कि अरदास नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अरदास अपने हिरदे विच हुंदी है, वो फिर साढ़े इस मुढ़ले भाव में समझ नहीं रहा। तीसरी चीज अरदास कैप्सूल है। सियाने लोग, पढ़े लिखे लोग, इतिहासकार लोग एक लोहे का लैके कैप्सूल उस दे विच पा देंदे हैं इतिहास। यह संसार का एक तरीका है, भावें पैरिस होवे, भावें लंडन होवे, भावें दिल्ली होवे। इंदिरा गांधी ने एक बारी तिमन याद होएगा कि कैप्सूल के अंदर, लोहे के कैप्सूल अंदर सारा हिंदुस्तान का इतिहास पा के लाल किले के हेठां दब दिता अते आख्या गया 1000 साल बाद कढ़ना। पर सानू पता लग गया कि उस औरत ने उस कैप्सूल के अंदर इतिहास नहीं पाया अपने टंबर का इतिहास पाया है। ख्याल इसी जिले हजार साल को ही पटेगा, देखेगा, यह समझेगा कि इतने सवाए नहरू तो सवाए इन्होंने खानदान तो कोई नहीं है, जनता का राज आ गया। उन्होंने कैप्सूल पट लिया, कैप्सूल पटिया तो खोलिया, उन्होंने सचमुच ही लिखा सी जेड़ा उस हिंदुस्तान का इतिहास नहीं सी, उस दे खानदान का इतिहास सी। इस करके कहते ने कैप्सूल हुंदा है, उस दे विच इतिहास बंद कर देना। अते पंथ ने बड़ी सियानत की थी, एक कैप्सूल के अंदर सारा सिख इतिहास पा दिता, सिखां दे हिरदियां विच दब दिता। हुण कोई कढ नहीं सकता, हुण किसे भी कोई ताकत नहीं है कि इस नूं छेक सके, वधा सके, कढ सके। इहदा एक एक शब्द जो है उनते बड़े ध्यान नाल सुन वाला है, उस नूं फिर समझण वाला भी है। सारा सिख इतिहास कैप्सूल दे विच पा के इस अरदास विच बंद कर दिता है, ताकि कीर्तन तो बाद, विचार तो बाद, पांच मिनटों के अंदर असी सारा इतिहास एक बारी अखां सामने दोहरा के हिरदे की शक्ति पैदा करके इतों जाइए। यह एक कारण है अरदास के अंदर आपने इस ढंग नूं वरत्या है। ढंग यह है कि पहली गल जिहड़ी किसी भी चंगे कार्ज विच, खासकर आनंद कार्ज अंदर तुसां देखिया होएगा, भाई साहब जिस वे शुरू करते हैं तो आखते ने तीन चीजों का सहारा लै रहे हां इस चंगे काम को शुरू करने। बस यह भी अरदास की बड़ी महत्ता है कि सानू समझाया प्रायोरिटी फिक्स करो, पहला गल केड़ी कहनी है, फिर पिछों केड़ी कहनी है, पहला केड़ी करनी है, पिछों केड़ी करनी है, यह भी सानू पता होना चाहिए। यह नहीं कि साडा कोई पिछम ही ना हो, पहला ही कोई ना हो, पहले तो पिछों की गल सानू समझ होनी चाहिए। इस करके जिसले आनंद कारज हुंदा असी एक गल सारी संगत दे सामने आखनी आ, महाराज दे हजूर दे सामने कहने आ, असी तत दे पुजारी नहीं हां, असी तथ दे पुजारी हां, असी एलीमेंट दे पुजारी नहीं। जिसले गुआंढी का विआह हुंदा ना तो वो तत इकट्ठा करते हैं, तत आप जानते हो, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, ये तत इकट्ठा कर दे। तुम देखा होगा कभी किसी गुआढ़ी का भरा का विह हों देखा होगा, उत पानी का कड़ा होगा, आकाश कहे के बीच होगा, अग्नि बाली होगी, अन्न रखा होगा, सत नाज रखे हो, तत के पुजारी हैं। सानू गुरु ने समझाया तत का पुजारी नहीं होना, तू तत का पुजारी होना है, तू सच का पुजारी होना है। इस करके शब्द गाया जाता है कि अस गुरु पिता तू तन है, मैनू तू तत विचों कढ के तत वल लाया, अपने वल लाया। इस करके अरदास मुढ़ली साड़ी यही है, कीता लोड़िए कम सो हर पै आखिए, ना अग्नि ना आकाश नू, ना हवा नू, ना पानी नू कभी आवाज नहीं देनी। जिस वे आवाज देनी है, कीता लोड़िए कम सो हर पे आखिए, जिन्हें भाई साहब हूं अरदास करेंगे तो देखना कहेंगे, प्रथम सब तो पहला भगवती सिमर कह, जो वाहेगुरु तेरी शक्ति का प्रकाश है, तेरी शक्ति जहूर है, तेरी शक्ति हर थां ते है, उसनों असी पहला सिर नवाने, कीता लोड़िए कम सो हर पे आखिए। अते दूसरे पुकारन दा राह यह रखना है, अपने शब्दां च नहीं पुकारना, क्योंकि अपने शब्द हमेशा कमजोर होंगे, अपने शब्द हमेशा टेढ़े होंगे, अपने शब्दां च हमेशा खुदगर्जी होंगी है, अपने शब्दां च बोलन वाले दा हमेशा किसी न किसी वल ख्याल रहता है। इस करके दूजी तुक महाराज ने दिती कि कीता लोड़िए कम सो हर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। मैं तैनू पुकार रहा हां शब्द राही, सतगुरु तेरे ही शब्द राही तैनू पुकार रहा, मैं कोई होर शब्द नहीं लै रहा, कोई होर शब्द का सहारा नहीं लै रहा। अते तीसरे संतां संग निधा, जे स्वाद लेना है किसी ने अमृत वांगू, ते संगत इकट्ठी करे, संगत दे मुंह च पाए, संगत नू नाल लैके टुरे,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੰਗਤ। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਕਾਰਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਜੇ ਆਪ ਨੀਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤਿਹਾਏ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਉਹ ਜੋਤ ਅੰਗਦ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਸ ਹਨ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਾਮੇ ਦਸ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ, 11 ਬਣਾ ਲਏ, 12 ਬਣਾ ਲਏ, 13 ਬਣਾ ਲਏ, 15 ਬਣਾ ਲਏ। ਜਦ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਮਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੌਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈਏ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਅਣਜਾਣ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਅੰਗ ਸਵਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੋ ਪੈਰੇ ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਸੀਟ ਆਫ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5 ਇਹ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿਅੰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ पैरा है। चौथा पैरा अरदास दा ए है, पंथ लई खालसे लई असी मंगदे की हां। ये फिर बड़े ध्यान नाल सुनवा लै मैं उन सारा ने, क्योंकि उनते हर गल बार बार समझाने वाली हुंदी ने, एक बारी ग्रहण करने वाली हुंदी है। अगली गल फिर मैं रल के आप तक करांगा, पर एक चीज जो खालसे ने मंगी है, जहां जहां गुरु खालसा जी सहाय तहां तहां रचिया रियायत। हम इसमें जरा आराम नाल पढ़ना, जो असी आराम वाली ना पढ़ांगे अर्थ होर निकल आवेंगे, अर्थे निकल आवेंगे। जिथे जिथे खालसा है उथे रियायत भी दई रचिया भी करी, तो क्यों उल्टी नहीं हो सकता। जी इसमें जरा पढ़िए फ्लो नाल, जे इसमें जरा इस तरह पढ़िए रवानी नाल पढ़िए, कि अर्थ ये नहीं है कि जहां जहां गुरु खालसा जी साहे तहां तहां रचिया रियाए, जिथे भी तेरा खालसा है उथे किसे दी रचिया भी हो रही है, उथे किसे नू रियायत दिती भी जा रही है। खालसे का तो कर्तव्य यही है कि रचिया अपने लिए, अपने लिए बड़ा कुछ पैसा मंग लिया है, जिन्हें पहले देखोगे ना अपने लिए बड़ा कुछ मंग लिया है। ये गल सारे संसार में दसन वाली है, जिथे भी खालसा होएगा, भावे एक छोटे जे पिंड विच है, भावे बैंकॉक की वड्डी नगरी विच है, भावे न्यूयॉर्क के शहर विच है, खालसा वो है जो रचिया कर रहा है, रियायत कर रहा है। जो नहीं ऐसा कर रहा तो समझ लो खालसे का रूप नहीं है। इस करके महाराज ने ये वस्तुआ साडे लई अरदास राही मंगियां। अखीर ते फिर जो शब्द के ने वो सिद्धांतक शब्द हैं, ये चारे शब्द अरदास तो बाद असी कहने हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पहाने सरबत दा भला। ये भी अर्थ बड़े ध्यान नाल देखने वाले ने, इस तरह के अर्थ नहीं कि सरबत दा भला वखरा कर दियो, नाम वखरा कर दियो, चढ़दी कला नू होर किसी पासे किली ते टंग दियो, ऐसा नहीं है। एक पूरी तुक है जिसनू असी बड़े ध्यान नाल पढ़ना है, ताकि इथो जान वेले मैं की पैगाम लैके जावां सारी संगत का, की पैगाम मैं दुनिया तक पहुंचावां। इस करके अखीर दे कहने आ, नानक नाम नानक दी मोर ला के ये गल संसार नू समझानी है, आसरा लैके समझानी है। चढ़दी कला नहीं मिल सकती जब तक नाम नहीं है, नाम नाल चढ़दी कला है, बाकी जोश है, क्रोध है, खाड़कू है, रोला है, शोर है। चढ़दी कला तां मिलेगी जे नाम है। जोश थोड़ी देर हुंदा है, रोह थोड़ी देर हुंदा है, क्रोध थोड़ी देर हुंदा है, जलवा थोड़ी देर हुंदा है। चढ़दी कला सिर्फ ताई होएगी जे नाम आधार है। अते तेरे पाने सरबत दा भला, सरबत दा भला सिर्फ इस विच है कि तेरे पाने विच रवे, और किसी भी सरबत दा भला नहीं है। ये मैं मंग रहा हां वाहिगुरु तेरे कोलों, सारी दुनिया दा भला होवे, पर भला होने दा नुस्खा ये है तेरे पाने, और कोई सरबत दा भला दा नुस्खा। मैं कौन हां सरबत दा भला करने वाला? असी करने हैं ना, देखो पंच सरबत दा भला मंग रहा है, देखो पंच सरबत दी भले की आवाज देंदा है, देखो पंच दा पहरा सरबत दा भला है। मैं तो अरदास राही सारे संसार नू वो नुस्खा जो गुरु नानक पिता ने आप वाहिगुरु को लिया के दिता, वो यही सी तेरे पहाने सरबत दा भला। ये अरदास साडा मुढ़ है, साडा अरदास सानू जाच है, बस ये सानू याद रहे। तुसी फिर मैनू ख्याल है कि दाता मेल भी करेगा। मैं सिर्फ आखिरी गल तां कहन लगा, दो बड़े मशहूर साधु हुए ने, फकीर दरवेश, ना लहन दी लोड़ नहीं। वो दो दरवेश एक बारी इकट्ठे हो गए एक दूजे नाल। आम तौर पर जिसले दरवेश गल्लां करन, साधु गल्लां करन, महापुरुष गल्लां करन, इन समझो अग नहीं बलदी, रोशनी हुंदी है, बस इन्ना फर्क है। जिस वेले कोई चंगे पुरुष बह जाए चंगी गल होएगी, अगर नहीं बलनगियां, आम मनुख बैठेगा तो अग बल पवेगी, है वही हों इसी तरह ही, दो तारा जोड़ो अग बल पवेगी, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जे उसनों ठीक तरह जोड़ो तो रोशनी हो जाएगी। दरवेश इसलिए बैठ के गल्लां करते हैं जिहड़ियां आप असी कदी बह के महापुरशां दीआं गल्लां बार बार जिसले दोहरांदे हां ते दोहरावांगे, फिर पता लगेगा रोशनी किस तरह हुंदी है। एक दरवेश ने दूसरे दरवेश नूं पुछिया, बुजुर्ग कि करते हो? गुजर किवें कर दियो। दूसरा दरवेश बोलिया, मिल जाए तो शुक्र, ना मिले तो सब्र। ते दूसरा दरवेश जरा उच्ची अवस्था सी, कहन लगा दरवेशा एक मेरे गली के कुत्ते भी कर देने, एक मेरे गली के कुत्ते भी कर देने, उन्होंने जो मिल जाए मुंह च लैके उस बोटी के टुकड़े में चुप करके खाते रहते हैं, शुक्र है। ना मिले तो गली के किसी किनारे च बोल रहे हैं, ये अवस्था हुई। तो अगले ने पूछा, तुम की करते हो? कह लगा, जे मैं मिल जाए तो वंड के छकदा हाँ, तो जे ना मिले तो सबर में रहता हाँ। यह है दरवेशा की कौम। यह लिखे पंथ प्रकाश अंदर कि सारा पंथ दरवेशा की कौम है। जे इन्हों चार दिन के बाद दो प्रशादे भुख्या सिखा मिल जान, जमीन ते रख लेंदे ने, तो जमीन ते रख के कहंदे ने, दे तवाजा भुखा कोई, आओ देख त्यार गुर होई। उस समय बैरी के नावे परमी संता छुकावे। तो नादिर शाह पूछदा, करदे की ने आप? जो नहीं खादा तो आप की करते ने? जो दुश्मन नु खवा दिता, कहंदा बचे तो आप खले।